हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलदरोष्ठात् पुलिन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्व अहम् न जाने। यं ब्रह्मा वरुरेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति रे ये स्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरा सुरगणा देवाय तस्मे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गु लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनकारणम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरा तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्छितं यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरा 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 तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्छितं। शब्दों का अर्थ देखिए। यस्य यानी जिसका अवयव यानी शारीरिक विस्तार स्थान है यानी स्थित है, कल्पितो यानी कल्पना किया गया, लोक यानी निवासियों के लोक, विस्तरा यानी विभिन्न, तत्व लेकिन वह यानी कि अब विभिन्न लोकों के निवासियों के लिए उसी भगवान को विस्तृत किया गया। अब देखो भगवान में से कारण दर्शय विष्णु निकले थे और कारण दर्शय विष्णु में से क्या वैभव दर्शय विष्णु निकले थे, फिर उसी में से क्षीर दर्शय विष्णु, ये भगवान से ही सारा कुछ ब्रह्मांड जो है वो हुआ। लेकिन फिर क्या है यहाँ पर लिखा तत्व लेकिन वो भगवान, जो भगवान है वो भगवान का रूपम, रूपम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भगवान का साक्षात्कार रूप है जो विशुद्धम है, वो शुद्ध है। और सत्वम अस्तित्व, सत्व का एक मतलब होता है वो इटर्नल है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऊर्जितम यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। अनुवाद देखिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भोग भौतिक अव्ययों से कोई सरोकार नहीं रहता। यानी कि जो भगवान है उसमें से ही ये समस्त विराट जगत जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अव्ययों से कोई सरोकार नहीं रहता है। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन उनका भगवान का वास्तविक एक शरीर है जो क्या है, नित्य है, आध्यात्मिक है और जिसकी कोई तुलना नहीं, यानी कि उसके विषय में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो इतना आध्यात्मिक है, इतना इटर्नल है कि वो इन भौतिक तत्वों के जरिए ना जाना जा सकता है ना समझा जा सकता है। एक बार फिर से अनुवाद को देखिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोग पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अव्ययों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के विराट रूप या विश्व रूप की कल्पना विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम रहते हैं। यानी कि जो भगवान का विराट स्वरूप के विषय में जो भागवतम में बताया जाता है, या जो ऐसे बताया जाता है ना कि भगवान की जो सारे संसार के जितने भी नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं, और सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, और जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान के ना शरीर के हड्डी, यानी कि पूरे विराट जगत को भगवान का ही बताया जाता है। तो ये विराट किसके लिए है? क्योंकि वो जो नवदीक्षित हैं, वो ये उनके माइंड में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा है, बड़े का क्या मतलब उनके माइंड में कि उसका विस्तार बड़ा होना चाहिए, देखने में भी वो बड़ा होना चाहिए, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा है तो चमत्कारी होना चाहिए। तो इनके माइंड में अगर उनको सामने रख दिया जाए कि भैया ये कृष्ण है, जिसको यशोदा मैया जिसको रस्सी से बांध रही है, और वो डर के रो रहा है, अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मसल रहा है, और वो इतना रो रहा है कि उसके ना सांसें जो है वो ऐसी आवाजें निकल रही हैं, तो ये कोई मानने के लिए मतलब उनके माइंड में ये बात ही नहीं आएगी कि ये भगवान हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने ये उनकी मति के अनुसार यह स्वतंत्रता उनको प्रदान की थी कि तुम्हें, क्योंकि विराट में भगवान दिखता है, तो ये भगवान का ही भौतिक ये जो विराट रूप है वो भगवान का ही है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान इसको मानते हैं वो गलत है, लेकिन वास्तव में जो भगवान के रियल स्वरूप को नहीं मानते वो तुच्छ हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन ये भी भगवान का ही एक ना स्वरूप है, तो उसके विषय में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि ये उनके लिए है जो भगवान के दिव्य रूप को के विषय में सोच सकने में अक्षम है। इनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अब उनको क्या मतलब होता है? रूप का मतलब होता है ऐसे भौतिक जगत का दिखने वाला रूप होना चाहिए, जो विराट होना चाहिए। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। अभी शुरू शुरू में उनको ब्रह्म के विषय में बताया जाता है, अभी डायरेक्ट से कोई सूर्य लोक को नहीं समझ सकता है, तो पहले उसको प्रकाश से ही बताएं कि देखो सूरज कितना प्रकाशमान होता है, इससे रोशनी हो रही है, तो उसी के विषय में बताएं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अव्यय सम्मिलित रहते हैं। अब भगवान ने क्या किया है, पहले कारण दक्षाई रूप से पूरे भौतिक प्रकृति का विस्तार किया है, और उसमें सारे भौतिक तत्व सम्मिलित हैं। अब सम्मिलित हैं तो उसमें क्या क्या है, सूर्य है, नदियां हैं, सब कुछ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ है। तो पृथ्वी क्या है, इस तरह से कि सूर्य क्या है, वो उनके नेत्र हैं, तो ये सब भगवान के शरीर में बताए जाते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ऐसा कि भगवान में और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, भगवान की शक्ति भी भगवान ही है, किंतु साथ ही साथ महातत्व भगवान से भिन्न है, वो अलग भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है तो शक्ति ही भगवान है ना? इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है, परंतु हम ये तो नहीं कह सकते कि शक्ति ही भगवान है और हम भगवान को छोड़कर केवल शक्ति की उपासना करना शुरू कर दें। हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकेंगे। भगवान की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान को समझने के लिए, परंतु उसी शक्ति को ही भगवान मान लेना ये तो बेवकूफी है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही है, किंतु साथ ही साथ महातत्व भगवान से भिन्न है। अब ये शक्ति भिन्न भी है, भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान का एक अलग स्वरूप। जिस श्लोक में क्या बताया गया, तद्वय भगवतो रूपम विशुद्धम तत्वमूर्जितम, कि लेकिन फिर भी भगवान का रूप है। पहले तो बताया कि भाई ठीक है इस विस्तार जगत जो है वो भगवान की शक्ति है, परंतु तद्वय भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्तिम, लेकिन फिर भी भगवान का एक स्वरूप है जो विशुद्ध सत्व में है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक साथ भिन्न तथा अभिन्न है, यानी कि भगवान वो भिन्न भी है कि शक्ति भगवान की ही है तो फिर है ना, लेकिन अभिन्न है कि वो तो एक ही बात है कि भगवान और भगवान की शक्ति सेम ही होती है। इस तरह विराट रूप की कल्पना विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। नित्य रूप जो भगवान का है वो क्या है, भगवान आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे ब्रह्मा जी बता रहे कि वो है वास्तव में भगवान जो आर्यम पुराण पुरुषम है, जो आदि है अनादि है वो भगवान है। और इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो विराट रूप की कल्पना है वो किसके लिए, निर्विशेषवादियों के लिए, भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है वो भी, लेकिन भगवान का नित्य रूप उसमें आ जाता है ये सब कुछ, क्योंकि भगवान जब मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर सारा विराट जगत उनको दिखता है। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए ही ये जो रूप है वो बताया जाता है। भगवान का यह नित्य रूप महातत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य स्वरूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। अब ये चीज समझने की है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भगवान का दिव्य रूप है यह नित्य रूप है और महातत्व की सृष्टि से पहले विद्यमान था, पहले ही था। यानी ऐसा नहीं है कि महातत्व को बनाने के बाद भगवान का रूप बना है, ये पहले ही था। और जहाँ पर इस और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। अब क्योंकि महातत्व को उत्पन्न करने के बाद उसके अंदर गुण आए ना, तो भगवान के अंदर गुण नहीं हो सकते, भगवान गुणातीत है। क्योंकि भगवान का जो रूप है, भगवान का जो दिव्य शरीर है वो ये भौतिक जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक है, तो उसके अंदर गुण भी नहीं है क्योंकि प्रकृति के गुणों से बिल्कुल परम है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महातत्व का किंचित भी स्पर्श नहीं होता है। यानी कि अब जो भगवान है उसके अंदर ये गुण नहीं है, उसी प्रकार वही भगवान का जो दिव्य रूप है अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है और दूसरे भगवान के अवतार होते हैं। यानी कि जो विष्णु तत्व अवतार होते हैं उनका स्वरूप वैसा ही दिव्य है, यानी कि क्योंकि वो उसमें से हुआ ना, वो तो इन भौतिक जगत की प्रकृति के बाहर नहीं हुआ है, तो फिर उसमें इन गुणों दिव्य गुण वाला होता है, उसमें महातत्व का किंचित भी स्पर्श नहीं होता। यानी कि उसके अंदर भी ये महातत्व वाली कोई भी चीज नहीं होती, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां गुण वगैरह ये सब भगवान के दिव्य स्वरूप में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर कुछ समझने की बातें हैं, वो ये कि भगवान की भक्ति, अब जैसे शास्त्र कहता है कि भगवान की भक्ति आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भगवान आपको बाध्य करेगा कि आप मेरे इस स्वरूप की पूजा करो। भगवान की भक्ति जो भगवान की भक्ति ना वो चार तरह से की जा सकती है। एक निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी न किसी भी चीज में मतलब उसका आकार दिखता नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है भगवान की सकाम पूजा, जैसे हम भगवान से कुछ मांग, जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.14 या 16 में, चतुर्विधा भजते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी भरत शर्मा, कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आठ कि कोई दुखी होते हैं, किसी को धन चाहिए होता है या कुछ जानने की जिज्ञासा करते हैं या ज्ञानी करते हैं, वो सब सकाम भक्त होते हैं, वो भगवान के पास आते हैं। और दूसरे होते शुद्ध भक्त, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो भी भगवान के पास जाते हैं। और एक दूसरे भक्त होते हैं जो नव दीक्षित होते हैं, जो भगवान की विराट रूप की पूजा करते हैं, यानी कि उनके माइंड में क्या होता है कि भगवान बहुत विराट रूप होना चाहिए, तो भगवान सबको फैसिलिटीज देते हैं। क्योंकि वास्तव में क्या है, जिनके मन में भगवान के दिव्य स्वरूप की बात नहीं बैठती है, तो भगवान उनको ये फैसिलिटीज देते हैं, यानी कि जो भगवान को विराट रूप में भजना चाहते हैं, जो भगवान को निराकार रूप में भजना चाहते हैं, तो भगवान भक्त वत्सल है और भगवान उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए निराकार भी बन जाते हैं, विराट भी बन जाते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। ब्रह्म और परमात्मा कृष्ण के ही आश्रय हैं। जो निराकार स्वरूप को भजते हैं वो गलत नहीं है, परंतु जो कृष्ण के स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते वो तुच्छ हैं, वो उनका ज्ञान कंप्लीट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्छितम, कि वो भगवान का स्वरूप है, वो विशुद्ध है, वो सत्व रूप है, वो इटर्नल है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्योंकि महाप्रलय के बाद जब कुछ भी नहीं रहता तब भी कृष्ण रहते हैं, रासलीला वैसे ही होती है, वंशीवट की छाया में हरि संग विहार तब भी होता है, जब प्रकृति और पुरुष भी फिर से भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर भी कृष्ण की लीलाएं वैसे ही हुआ करती हैं। यानी कि वो वास्तविक में जो भगवान है उनका जो धाम है, उनकी लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो जो उनको स्वीकार नहीं करते तो वो कभी उनको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि केवल भाव से ही भगवान को प्रेम किया जा सकता है। निराकार का हम चिंतन तो कर सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण से सुंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि निराकार भगवान का अंश नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य प्रकाश जो है वो निराकार है, परंतु सूर्य जो है वो साकार है ना, स्वयं तो उसका साकार भी, वैसे ही ब्रह्म जो है वो निराकार है और उसका साकार, उसका अस्तित्व क्या है, कृष्ण उसका अस्तित्व है। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम तत्वदर्शियों के पास जाओ और निष्कपट भाव से अपने संशय मिटाओ, तो तत्वदर्शी क्या बताते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो जो वास्तव में तत्वदर्शी है वो ये बात बताते हैं कि भगवान के तीन फेज हैं, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। जो सत्य है वही ज्ञान है, और सत्य यही है कि कृष्ण की शक्तियों से ये जगत चल रहा है, केवल कृष्ण ही आदि पुराण पुरुष है और एक प्रकृति और एक पुरुष है। ये दो भगवान की शक्तियां हैं जिनसे ये जगत की का सृजन होता है। अब प्रकृति में महातत्व है जिसके हमने पहले श्लोक में पढ़े थे, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादिभि संभूतम षोडश कलम आदौ लोकसृक्षया। कि अब दो चीजें इसने बताई, एक पुरुष बताया और एक प्रकृति बताई, ठीक है। एक तो पुरुष है और दूसरी 16 कलाओं से युक्त प्रकृति है जिसमें 5 महाभूत हैं, 10 इंद्रियां और 1 मन है। पुरुष यानी जो कारण दक्षय विष्णु, वो क्या करते हैं, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण पहले उनके रोम कूपों से बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रकृति दृष्टिपात करने से समस्त चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। और भगवान का एक अंश परमात्मा स्वरूप में समस्त जीवों के हृदय में बैठ जाता है। पहले क्या होता है कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, ऐसा क्या है? देखो पहले आध्यात्मिक जगत है, पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विशाल सागर है, बहुत बड़ा सागर है, और उसको क्या बोलते हैं? कारणव बोलते हैं, यानी कि वो कारण बनता है। इसको कारणव भी बोलते हैं और इसको विरजा नदी भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के एकदम बीच में, ये मतलब बीच में है, ये नीचे भौतिक जगत है, ऊपर आध्यात्मिक जगत है। इसको विरजा नदी भी बोलते हैं, यानी जब आध्यात्मिक जगत में जाना होगा तो इस कारणव या विरजा नदी को लांग के जाना होगा। अब इस विरजा नदी के ऊपर आध्यात्मिक जगत है, इसको हम अपनी भौतिक समझ से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक समझ है, इसको समझना संभव नहीं है। उसको तो छोड़ दो, ये भौतिक जगत को भी हम समझ नहीं सकते कि इस भौतिक जगत में 14 लोक हैं और 14 लोक में क्या चीज कहाँ पर है, ये भी हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। 14 लोक को छोड़ दो, हमारी पृथ्वी है खाली जिस पर हम लोग रहते हैं, उसमें भी कहीं पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कहीं पर है ना नदियां हैं, नदियों में क्या है, समुद्र में क्या है, उसको भी हम सही तरह से नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है। तो पृथ्वी लोक को भी नहीं समझ सकते, तो पृथ्वी लोक को छोड़ दो, हम खाली पृथ्वी लोक के सिर्फ दूसरे जितने भी 84 लाख योनि है उनको छोड़ दो, खाली मनुष्यों को भी नहीं समझ सकते। हम समझ सकते कि इसके मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसकी नीयत कैसी है, नहीं समझ सकते। तो सारे मनुष्यों को भी छोड़ दो, हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कि हम अपने पूरे शरीर के विषय में समझ सकते कि क्यों आज मेरा टेम्परेचर लो है, क्यों आज मेरा मुझे बुखार हो गया, क्यों मेरी तबीयत सही नहीं है, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा, कब अपने आप को नहीं समझ सकते। अपने आप को भी छोड़ दो, अपने जिस्म के एक अंग को भी यदि हम सोचें तो हमें उसके विषय में भी ज्ञान नहीं होता है। कि जैसे आंख को ले लें तो हमारी आंख में क्या क्या है, किस तरह से ये ना कार्य कर रही है, इसके अंदर कौन कौन सी वाइंड है, ये क्या किस तरह से खुल रही है, किस तरह से झपक रही है, कुछ भी नहीं पता। तो हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम अपने ही शरीर के किसी अंग के विषय में नहीं समझ सकते, तो भला हम आध्यात्मिक लोक को, भगवान के लोक को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन शास्त्र चक्षु से हम क्या जानते हैं कि एक विशाल सागर है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के सेंटर में है, और वहां पर उस सागर में जो जल है वो आध्यात्मिक जल है, यानी कि ऐसा नहीं हमारे पानी जैसा होता, ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक स्पेशल जल है। और वहां उस जल में कारण दक्षाएं विष्णु शयन करते हैं, ठीक है, वो शयन कर रहे हैं और साथ में श्वास ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरह फटाफट सांस ले रहे हैं, वो बहुत विशाल है, यानी कि इतना विशाल है, इतना विशाल है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी उसमें। तो उनके रोम कुंभों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं जब वो सांस लेते हैं, और जब सांस वापस अंदर डालते हैं तो ब्रह्मांड वापस अंदर जा रहे होते हैं, यानी कि ब्रह्मा की आयु, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा की आयु उतनी है जितनी वो सांस लेकर उसको अंदर डाल देता है। और ये कारण दक्षाय विष्णु वो क्या कर रहा है, उदक, ये लिखा ना कारण उदक, कारण मतलब कारण बनता है, उदक का मतलब होता है जल, ये है ना पूरे जल पे लेटा हुआ है, पूरा वहां पर जल ही जल है, जो कारण समुद्र है उसमें पूरे में ये भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है। अब वो उनके रोम रोम कुंभों से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, उस ब्रह्मांड के आधे भाग को वो अपने शरीर के जल से भर देते हैं, ठीक है, अपने शरीर उसके अंदर जो जल होता है वो कारण दक्षाएं विष्णु के शरीर का जल होता है, उससे वो भर देते हैं। और वो जल भी स्पिरिचुअल होता है, भौतिक नहीं होता है, और उसके उस जल के ऊपर गर्भो दक्षाएं विष्णु शयन करते हैं। अब दूसरे विष्णु आ गए ना, वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर, पूरा ब्रह्मांड के अंदर लेटे हुए होते हैं गर्भो दक्षाएं विष्णु के रूप में, और उनकी नाभि कमल से आना कमल निकलता है, और जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा ना, नाभिर्दाम्बुजादासी ब्रह्मा विश्व सृजता ब्रह्मा विश्व सृजाम्पति। तो उसकी नाभ से जो ब्रह्मा जी निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सृष्टि को सृजन करने वाले हैं। अभी ये ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से है, तो इसीलिए गर्भोदक्षाय विष्णु का एक नाम पद्मनाभ भी होता है, क्योंकि पद्म निकला ना उनकी नाभि से, तो इनको एक नाम उनका पद्मनाभ भी होता है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन जो गर्भोदक्षाय विष्णु है ना, उनका एक दूसरा अंश उत्पन्न होता है। अब देखो ये सृष्टि में हो रहा है, ठीक है, ये हमारी सृष्टि जो है ना, हमारा जो भौतिक लोक है ना, उसमें एक श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप में एक दूध का समुद्र है, ये हमारी सृष्टि में है, एक दूध का समुद्र है, और उसी समुद्र में शिरोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं। वास्तव में प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर, जितने भी ब्रह्मांड होते हैं, उनके भीतर एक आध्यात्मिक लोक होता है, और उस लोक में श्वेत द्वीप होता है। जैसे हमारे इस भौतिक जगत में हम देख सकते हैं वृंदावन है, वो भी आध्यात्मिक है, हम उसकी आध्यात्मिकता को अपनी भौतिक चक्षुओं से नहीं देख पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी वृंदावन भी आध्यात्मिक है। उसी तरह श्वेत द्वीप होता है, जो हमारी दृष्टि में हमें नहीं दिखता, लेकिन होता है, जहाँ पर शिरोदक्षाय विष्णु शीर के सागर में, यानी दूध के सागर में शयन करते हैं। अब भगवान अपनी इच्छा से ही अपने ही आध्यात्मिक लोक का कुछ हिस्सा, या कुछ भी, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई हिस्सा इस संसार में डाल देते हैं, और वहां पर अपना ही एक अंश यानी शिरोदक्षाय विष्णु भी उत्पन्न कर देते हैं। जो क्या करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, भगवान की भक्तों पर जब जब कष्ट आता है, और जब अधर्म जोर अधर्म की बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो भगवान उस शिरोदक्षाय विष्णु में से अवतार लेकर भौतिक जगत में आते हैं, और यही शिरोदक्षाय विष्णु का एक अंश रूप में, परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं। तो अब तक हमने तीन श्लोकों में यही पढ़ा है, अब तीन से पांच में ये वर्णन आएगा कि किस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से उत्पन्न होने वाले पद्मनाभ में ये सारे 14 भवन किस तरह से स्थित है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये सब भगवान का ही विस्तार है, वास्तव में ये सब कृष्ण का ही विस्तार है। और जब भक्त अपने भगवान की इतनी महानता को सुनता है, भगवान के विषय में इतना सब जानता है, तो उसके हृदय में भगवान के लिए प्रीति और भगवान के लिए आदर और भी बढ़ता है कि मेरा प्रीतम इतना महान है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको डायरेक्ट से कभी दशम सिकंद पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दशम सिकंद में भगवान की लीलाएं हैं। अब आपको जब भगवान के विस्तार के विषय में, भगवान की रियलिटी की, भगवान की शक्तियों के विषय में खबर नहीं पड़ेगी, तो आप भगवान के कार्य को देखकर गलती कर बैठोगे। इसलिए ये सब बताने के बाद भगवान आपको प्रेम का दिव्य रस बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जो फिर भी जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो भी निगरणीय लिखा हुआ है। भगवान की जो दिव्य लीलाएं, दिव्य जो शक्तियां हैं, उनके विषय में कोई नहीं बता सकता। स्वयं भगवान से अर्जुन ने कहा, भगवान अत्यंत सुंदर भगवान से कहा 10.18 में, अर्जुन कहने लगे, विस्तरीणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि श्रुण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा यौगिक शक्तियों का वर्णन कीजिए, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ। फिर भगवान ने जान तो क्या कहा 19 में, भगवान ने कहा, हंतति कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। बोला ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य विभयों के वैभव युक्त रूपों के वर्णन करूंगा, लेकिन मैं सारे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, मेरे तो विभूतियों का कोई अंत है ही नहीं। तो ऐसे कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 82 अपने विभूतियों के विस्तार बताए, मतलब 82 82 विभूतियों का उदाहरण लिया। उसके बाद 40 में भगवान ने सोचा कितना बताऊंगा, ये भी बताना, ये इतने सारे मुझे तो बहुत, मेरी विभूतियां तो अनंत हैं। तो मैं फिर वहीं पर स्टॉप किया और 40 में क्या कहा, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परांतक एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परांतक, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। और आगे बहुत ही सुंदर कहा, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, 41 में भगवान ने कहा, यद्यत् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो यदि सुंदर है, यदि प्रेम करने के लायक है, यदि तेजस्वी है, यदि ऐश्वर्यमय है, तो वो केवल और केवल मेरे ही तेज की एक सफुलिंग मात्र से है। इसका मतलब क्या है पता है, कि संसार में जो कुछ भी हमें अट्रैक्ट करता है, जैसे अगर धन हमें अट्रैक्ट करता है, तो धन इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता है हमें, अपनी ओर आकर्षित इसलिए नहीं करता क्योंकि धन में चार्म है। धन में चार्म नहीं है क्योंकि वो भगवान की विभूति है, इसलिए वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। यदि किसी को सुंदरता अट्रैक्ट करती है, जैसे सुंदरता की तरफ आकर्षण होता है किसी का, तो वो सुंदर स्त्री नहीं होती है, वो स्त्री के अंदर सुंदरता नहीं है, आकर्षण स्त्री के अंदर नहीं, क्योंकि वो भगवान की विभूति है इसलिए उसके अंदर आकर्षण है, तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि किसी को ज्ञान आकर्षित करता है कि भाई मुझे याद ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ज्ञान की तरफ यदि कोई आकर्षित होता है तो उस ज्ञान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उस वो क्योंकि भगवान की विभूति है इसलिए वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी तरह से यदि किसी को वैराग्य की तो कुछ नहीं चाहिए संसार में, वैराग्य यदि किसी को आकर्षित कर रहा है ना, तो वो वैराग्य भी क्योंकि कृष्ण की विभूति है इसीलिए वो आपको आकर्षित कर रहा है। यानी कि संसार में कुछ भी आकर्षित कर रहा है यदि आपको, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भगवान की विभूति है, क्योंकि वो भगवान का ही विस्तार है। भगवान ने कहा मम तेजो अंश संशय, कि मम तेजो अंश संभव, कि जो भी है वो मेरे तेज का एक छोटा सा अंश है जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत ही सुंदर श्लोक उच्चारण किया। श्री प्रभुपाद जी अक्सर इस श्लोक के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं 10.42 में, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांक्षेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ये अंश है यहाँ पर जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, कारण दर्शाए विष्णु भगवान का एक अंश, भगवान की एक विभूति है जिसे संसार में पूरे में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हो जाते हैं और इस पूरे जगत को स्थित किए रखते हैं, धारण किए रखते हैं। और इसी के विषय में ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महत्स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। महाविष्णु के रोम कूपों से, रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामी, उन यानी महाविष्णु के एक श्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जैन की एक विशिष्ट कला मात्र महाविष्णु भी है, या स्याय कनिष्व सितकालम अथावलंब्य, कि उनकी एक सांस से तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड आते हैं और चले जाते हैं, और वो विष्णु महान से यह यस्य कला विशिष्ट, वो महाविष्णु भी उसी की एक कला है, उसी का एक छोटा सा तेज का एक अंश, उनके जो अंश का एक तेज है। तो ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कृष्ण की ही दो शक्तियां हैं, यानी पुरुष और प्रकृति, और पुरुष क्या करता है, प्रकृति पर दृष्टिपात करता है जिससे समस्त जीवों का संभव, जीव संभव होते हैं, और पुरुष यानी वही पुरुष परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और भगवान का एक अंश आत्मा जीव के हृदय में डालकर इसको ये शरीर दिया जाता है। अब जीव को, क्योंकि आत्मा को एक है ना शरीर दिया जाता है, और उसी जैसे उसकी पूर्व जन्म की जैसी आकांक्षाएं थी उसके अनुसार उसको शरीर दिया जाता है, किसी को मनुष्य का मिलता है। तो आत्मा, अब आत्मा आ गई है शरीर के अंदर, आत्मा विशुद्ध है, उसी भगवान का एक अंश है, लेकिन आत्मा अज्ञानता की, आत्मा के ऊपर अज्ञानता का पर्दा है, अज्ञानता ही मन के विकार है। मन क्या है, वो अज्ञानता है। जब मन इस नीरस जगत में सुख दुख की कल्पना करता है तो मन मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, और इसी कारण जब वो अपने आप को शरीर मानकर इस संसार के, वो जो जीव है जो हृदय के अंदर बैठा होता है, वो मन की कल्पना, मन की कल्पना क्या है कि सुख और दुख मुझे इससे मिल रहा है, मन मन बोलता है कि ये चाहिए ये चाहिए, मन इच्छा करता है, और आत्मा सोचता है कि हाँ इस नीरज जगत में ही सुख है शायद, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा है। अज्ञानता रजोगुण से है, वो बाद में हम उस पर कहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इसी कारण जब हम अपराध करते हैं सुख और दुख करने के, तो उसी के अनुसार कर्मों के फल मिलते हैं। अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्मों से नरक मिलता है, और मिश्रित कर्मों से फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस झूठी मान्यता को वासना कहते हैं, जिसके कारण जीव पाप और पुण्य करता है। ये वासना है हृदय के अंदर जिसके कारण पाप और पुण्य हो रहे हैं। वास्तव में ये जीव, ये संसार जो है वो महातत्व से बना है। क्या है अभी उसमें महातत्व में क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां भी इन्हीं महातत्व का ही हिस्सा है। अब तत्व से निर्मित ये शरीर क्या कर्म करेगा, यानी कि वो तो निर्जीव है ना, वो क्या सुखी, उसके अंदर सुख कहाँ से आएगा, इसके अंदर सुख की संभावना ही नहीं है। इसके अंदर यदि कुछ है भोगता तो वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा जो है वो इस भौतिक प्रकृति को भोग नहीं सकता क्योंकि उसके साथ इसका मैचिंग ही नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि अब आत्मा का ज्ञान आवृत हो जाता है रजोगुण के कारण, काम वासना के कारण आवृत हो गया, तो वो समझता है शायद मैं शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि आ जाती है, फिर क्या करता है वो इस संसार में भोगने के लिए कार्य करता है, और कार्यों से उसको फिर से कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सत्य जो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही भगवान का अंश है, और इसी कारण वो सर्वव्यापी है, है ना। प्रकृति और पुरुष दोनों भगवान का ही अंश है, परंतु प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ये जो जीव है ना, जो हृदय में वो भगवान का एक अंश है, वो प्रकृति के गुणों के कारण मोहित हो जाता है, और इसी के कारण जो है वो अपराध करता है। ये सोचता है कि मुझे शायद इसमें आनंद आएगा। अब हम तीन गुणों का स्वरूप समझेंगे। तीन गुण जो है आपको इतना, जो इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है इसके विषय में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर दो, ठीक है। आप बताओ कि मिश्री मीठी होती है या सुखी होती है, जो मिश्री होती है वो मीठी होती है या सुखी होती है। डेफिनेटली उसका आंसर है कि मिश्री मीठी होती है। तो इसका अर्थ ये है कि भले मिश्री कितनी ही मीठी क्यों ना हो, उसके अंदर सुख नहीं है ना। सुख अगर जो, तो जो खुद सुखी नहीं है वो तुम्हें क्या सुख दे सकती है। उसी तरह से ये तीन गुण है। जैसे सत्वगुण का प्रभाव क्या है, प्रकाश ज्ञान, रजोगुण का प्रमाद, तमोगुण का अंधकार, ये उनका प्रभाव है परंतु उनका सुख दुख नहीं है, वो उनके अंदर सुख और दुख नहीं है। हम तभी काम के वश में होते हैं जब हम इससे सुख लेने की इच्छा करते हैं, कि हम समझते हैं कि यदि हम रजोगुण के वश में आ गए हैं और काम वासना पूरा करेंगे तो उससे हमें सुख मिलेगा। काम को आना है तो आने दो, काम के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, परंतु उससे सुख ना लेने पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। इसे भगवान कहते हैं 2.17 में, आपूर्य मानम अचला प्रतिष्ठम सामुद्र मापह प्रविशन्ति यत्वत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र अपने जल से परिपूर्ण होता है, संतुष्ट होता है, तो उसके अंदर कितनी भी नदियां आ जाएं, वो उसे विचलित नहीं करती हैं। उसी प्रकार यदि जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक सुख में ही संतुष्ट होगी तो उसके अंदर चाहे कितनी ही विषय वासना की इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी तो वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होगी। और वास्तव में सशांति मापनोति ना काम कामी, और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है वही शांति को प्राप्त करता है, काम वासना को पूरा करने वाला नहीं। लेकिन जब बुद्धि माया के कारण ये मान लेती है कि इसमें सुख है, पुरुष या स्त्री के शरीर में सुख है, तो ये झूठी मान्यता उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य कर देती है। ये सारे जो गुण हैं वो शरीर के अंदर ही हैं। कहाँ रहते हैं जानते हो? ये सारे गुण शरीर में बुद्धि में रहते हैं। और जब कोई तत्वज्ञानी गुरु जीव को इन तीन गुणों वाली माया के अंधकार को तत्वज्ञान के प्रकाश से निवृत्त करा देता है, यानी कि फिर जब पता चलता है कि ये सब संसार में जो कुछ भी है उससे कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, ये भौतिक चीजें आपको कैसे आनंद दे सकते हैं, तो फिर जब तत्व ज्ञान के प्रकाश से माया के अंधकार को जब वो छुड़ा देता है और बुद्धि से माया का पर्दा हट जाता है, तो ये आत्मा माया के पर्दे से दूर अपने भगवान का खुद में साक्षात्कार कर रही। ऐसा नहीं कि भगवान की इधर दूसरी जगह से आके तुम्हारे हृदय में बैठेंगे और फिर उसको साक्षात्कार, वो बैठे हुए हैं, सिर्फ माया का पर्दा लगा हुआ है, उसको हटाएंगे तो भगवान स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। और जब बुद्धि से माया का पर्दा हट जाता है तो ये सारी झूठी मान्यता जो है वो सब समाप्त हो जाती है। झूठी मान्यता क्या है? कि उसके शरीर में सुख है, उस वस्तु में सुख है, ये इससे मुझे सुख मिलेगा, ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा, ये सब झूठ है। संसार में जीव आत्मा को किसी में सुख नहीं मिल सकता। जिस प्रकार मछली को पानी के अतिरिक्त और कुछ भी दे दो तो उसे आनंद नहीं आएगा, उसी तरह से आत्मा को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी दे दो उसे आनंद नहीं आएगा। जब तक ये झूठी मान्यता है, ये माया का पर्दा है, तभी हम सोचते हैं कि इसमें सुख है उसमें सुख है। जब मान्यता नहीं तो सुख दुख भी नहीं है, और जब सुख दुख नहीं है तो काम वासना भी नहीं है। काम वासना यदि नहीं है तो रजोगुण भी नहीं है, और रजोगुण नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं। अब अज्ञान ही नहीं है तो फिर हम ये ज्ञान हो जाता है कि क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, और इस संसार में क्या है, जो कुछ भी है वो पंच तत्व पंचभूत पंच महाभूत से बना हुआ है। अब आप जब तक अज्ञान में हो तभी आप सोच रहे हो कि इस पंचभूत से निर्मित कोई शरीर या कोई वस्तु हमें सुख दे सकती है। अगर अज्ञान का पर्दा नहीं है तो फिर सोचो, पृथ्वी यानी मट्टी, जल यानी पानी, और है ना अग्नि यानी फायर, और आना हवा या आकाश, इससे आप क्या सुख ले सकते हो? इनसे ही निर्मित ये पूरा संसार है, इससे कोई क्या सुख ले सकता है? आई एम गारंटेड इम्पॉसिबल। कोई नहीं, कोई सुख है नहीं इस संसार में। जीव आत्मा के लिए इस संसार में कोई सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव आत्मा शाश्वत है। यह संसार में जो कुछ भी है वो पंचभूत का या फिर 16 कलाओं से, ये 16 चीजों से मिलकर बना हुआ ये जो महत्त्व है, उसी से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो आपको क्या सुख दे सकता है? जबकि वो स्वयं ही सुखी नहीं है, ना वो इटर्नल है और ना ही सुखी है। वास्तव में ये केवल अज्ञानता ही है। जिसके कारण बुद्धि जीव आत्मा को ये मानने पर विवश कर देती है कि पंचभूत में सुख है, इस भौतिक जगत में सुख है, और ऐसा मान लेने पर मन जीवनी शक्ति को सुख लेने सुख की इच्छा से अलाव करता है कि ठीक है तुम जाओ सुख करो, ये चीज प्राप्त करके सुख करो, ये काम वासना को पूरा करने के बाद तुम सुख, जीव समझता है काम वासना को पूरा करने से सुख मिलेगा, और ऐसा समझकर वो जीवनी शक्ति को जब वो अलाव कर लेता है तो वीर्यपात होता जाता है। और अगर हम अपनी तरफ से सुख ना लें तो संसार की कोई भी शक्ति की औकात नहीं है कि हमें गिरा सके, क्योंकि जीव आत्मा इटर्नल है, वो भगवान का अंश है, और इस भौतिक जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे संतुष्ट कर सके। लेकिन यदि अज्ञानता के कारण जब वो सोचता है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, तभी तो वो इससे आकर्षित हो रहा है, तभी तो उसकी तरफ आसक्त हो रहा है। जब उसे ये पता चल जाएगा कि मेरा लक्ष्य ये है ही नहीं, मुझे ये चीज में आनंद आ ही नहीं रहा है, तो संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति उसे अपने लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और बुद्धि से ये अज्ञान का पर्दा कैसे हटेगा, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। जो प्रेम से सदैव मेरे नाम का भजन करेंगे, मेरी लीलाओं का श्रवण करेंगे, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे यह सब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और वो मुझ तक पहुंच सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।